الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. جس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں، معرفت القرآن جلد نمبر 3 میں سے، اور 122 نمبر کی آیت جس کی ابھی ہم نے تلاوت کری، اس کے معرف و مسائل ہم پچھلے کلاس میں پڑھ رہے تھے. ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور اس کے تحت جو ہے بہت ساری باتیں متفرق جمعے کے بیان میں بھی ہو چکی ہیں. معرف و مسائل میں جو اب ہم پڑھ رہے تھے اسی کو انشاءاللہ ہم آگے چلا کر مکمل کرتے ہیں. کہ اس میں سب سے پہلے تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معارف و مسائل میں یہ ہمیں سمجھایا کہ مؤمن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے. جیسے اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس آیت میں فرمایا نا کہ کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم اس کو زندہ کر دیا، پھر اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کو لے کر کے وہ انسانوں کے درمیان چلتا ہے، کیا وہ شخص اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں ہے اور اس کے لیے اس میں سے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، کوئی اس کے یعنی باہر نکلنے والا نہیں ہے، وہ اندھیروں کے اندر ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا یہ ویسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے فرما رہے ہیں نا. اور یہ کہ ہم نے اسی طریقے سے مزین کر دیے کافروں کے لیے وہ جو عمل کرتے ہیں. تو زندہ اور مردہ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور کافر مردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیسے؟ تو اس کے لیے حضرت نے جو دلیل استعمال کری کہ بھئی یہ زندہ کیوں اور وہ مردہ کیوں، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو دونوں ہی زندہ ہیں، کافر بھی زندہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور دوسرے سارے فنکشنز آف لائف جو ہے وہ، جو انگریزی میں فنکشنز آف لائف کہا جاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے کر رہا ہوتا ہے، اور مومن بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. پھر اس کو زندہ اور اس کو مردہ کیوں کہا؟ تو اس کے لیے پھر مقصد کی بحث کو اٹھایا، مقصد کی بحث کو، یعنی مقصد کی ڈسکشن شروع کری کہ بھائی اٹ آل ڈپینڈز آن کہ کوئی اپنا مقصد پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا.
واشف کریم صاحب تو سنیا کر
ڈپینڈ کرتا ہے نا ہر چیز، ٹھیک ہے. اگر مقصدیت ہے تو پھر وہ زندگی کہلائے گی، اور اگر مقصدیت نہیں ہے تو وہ موت کہلائے گی. یعنی مقصد، مقصدیت کا مطلب کیا؟ کہ مقصد کے لیے زندہ ہے تو وہ زندگی کہلائے گی، اور اگر مقصد کے لیے زندہ نہیں ہے تو پھر وہ زندگی نہیں کہلائے گی. تو سب سے اہم چیز کیا بنی؟ مقصد، ٹھیک ہے، پرپس. تو اگر ہماری زندگی بھی ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں بھی ہمارے مقصد سے الائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا ہماری زندگی میں، ایک تو عام لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی مقصد ہے تمہاری زندگی کا، ٹھیک ہے، مطلب یہ جملہ کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ بھی پھر مقصد. تو یہ جملہ کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے نا، بھائی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو اگر تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی اچھی ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی بھی مقصد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی خراب ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو बात है, ये जो बात है ये काफिर ऐसी बात कर सकता है, ठीक है? ऐसी बात कोई काफिर कर सकता है, कोई गैर मुस्लिम ऐसी बात कर सकता है, कोई मुसलमान ऐसी बात नहीं कर सकता। कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मकसद है तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं है। ये बात गैर मुस्लिम तो कर सकता है, ये मुसलमान ऐसी बात नहीं कर सकता, ठीक है? तो गैर मुस्लिम बात करते हैं इस तरीके की कि भाई तुम्हारी जिंदगी में कोई मकसद है। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि भाई अच्छा, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो वो बच्चे से पूछते हैं, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो बच्चा जवाब देता है, मैं बड़े होकर के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ओहो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मकसद है, बस जी तुम्हारी जिंदगी अच्छी है। कोई बच्ची जवाब देती है, मैं बड़े होकर के पायलट बनना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी में मकसद है कि तुम पायलट बनना चाहती हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, ठीक है? जबकि वो किसी दूसरे बच्चे से पूछे कि भाई तुम्हारी जिंदगी में क्या मकसद है, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, है ना? ये आम आम सवाल होता है ना, जब आप किसी घर में जाते हैं और इस घर का बच्चा आपके सामने आता है, तो हमारे यहाँ अमूमन दो सवाल किए जाते हैं। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है? कौन से ग्रेड में पढ़ते हो, कौन से लेवल में पढ़ते हो, या कौन से, क्या हुआ इंडिया में उसको ग्रेड नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, तो तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है? और तुम्हारा क्या नंबर आया है, तुम्हारे क्या ग्रेड्स आए, ये एक सवाल होता है, ठीक है? किसका किस स्कूल में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, और तुम्हारे क्या नंबर आए हैं, ठीक है? और दूसरा सवाल क्या होता है, दूसरा सवाल होता है तुम बड़े होके क्या बनोगे, राइट? तुम बड़े होके क्या बनोगे? तो बस हम ये सवाल क्यों करते हैं जब बच्चे से मिलते हैं, किसी भी बच्चे से मिलते हैं हम ये सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे नजदीक ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है? हमारे नजदीक ये जो है वो एक करने के लायक सवाल है, और ये एक अहम सवाल है। इस वजह से हम जो बच्चा नजर आता है उससे ये सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा बड़े होके क्या बनना है इसका कोई जवाब दे दे तो हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ भाई, इस बच्चे को पता है इसने क्या करना है, ठीक है? और अगर कोई बच्चा ये सवाल सुन करके जवाब ना दे पाए तो हम उसको जो है ना वो समझाते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, आपको पता ही नहीं है कि आप बड़े हो गए क्या बनना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है? तो हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कम से कम ये आजिज तो ये कहेगा कि ये बातें तो काफिर करता है, ठीक है? ये बातें तो काफिर करता है। तो अगर मेरी बात सही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें और काफिर में कोई फर्क नहीं, हमें और काफिर में कोई फर्क नहीं, ठीक है ना? और अगर मेरी बात सही नहीं है तो आप बता दें कि फिर सही बात क्या है, ठीक है? अगर मेरी बात सही नहीं है तो आप बता दें कि सही बात क्या है, ठीक है? तो अब इस आजिज का सवाल जो है ना वो ये है कि ऐसी बात जो है वो काफिर क्यों करता है। ये इस फकीर ने जो ये बात कही कि भाई इस तरह की जो बात है ना वो तो काफिर करता है, कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी क्या वजह है? कुछ आपको समझ में आता है, इसकी कोई वजह है या ऐसी खामखाई में बस कह रहे हैं? ऐसी बात कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, तो ये बात जो है वो एक काफिर ऐसी बात क्यों कहते हैं, एक मोमिन ऐसी बात क्यों नहीं कहता, उसकी क्या वजह है? यानी हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो नहीं, एक जो है वो बच्ची ने जवाब दिया कि उसकी वजह यह है कि मुस्लिम्स ऑलरेडी हैव अ पर्पस इन लाइफ, ठीक है? उनके लिए दुनिया सब कुछ है, आखिरत की कामयाबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, काफिर के लिए दुनिया ही सब कुछ है, काफिर के लिए दुनिया ही सब कुछ है। तो उसका सादा सा जवाब ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि भाई मुसलमान तो अपना मकसद खुद डिफाइन नहीं करता ना, मुसलमान तो उसके परवरदिगार का जो प्री डिफाइंड मकसद है वो उसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हैं। ठीक है, तो परवरदिगार ने तो ऑलरेडी आपका मकसद डिफाइन कर दिया है ना, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, है ना भाई। ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हमारा मकसद पहले से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो जब एक चीज पहले से डिफाइन हो चुकी है तो फिर अब आप उसको रीडिफाइन क्यों कर रहे हैं, या ये कि आप उस वाले जो डेफिनेशन को आप क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाते। ठीक है, बल्कि हमारा तो ये काम होना चाहिए कि हम बच्चे से पूछें कि बच्चे आपकी जिंदगी का क्या मकसद है। तो अगर बच्चा जवाब दे कि मेरी जिंदगी का मकसद पायलट बनना है, तो हम उसको समझाएं कि बेटा आपकी जिंदगी का मकसद तो अल्लाह की बंदगी होना चाहिए। ठीक है, पायलट बनना या डॉक्टर बनना ये तो बात की बातें हैं। ठीक है, और ये तो कुछ पता भी नहीं है कि आप पायलट बन भी सकेंगे कि नहीं बन सकेंगे। ठीक है, या आप जो है वो मतलब उस उम्र तक पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे जब बंदा पायलट बनता है या डॉक्टर बनता है। ठीक है, लेकिन हमें तो अल्लाह ताला ने बंदगी के लिए पैदा किया है ना, तो हमें तो अल्लाह ताला का अच्छा बंदा बनना है। ठीक है, अच्छा बंदा बनना है, अपनी बंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा जवाब ना दे तो हम उसको गबी ना समझें, बल्कि हम उसको बताएं कि ये है हमारी जिंदगी का मकसद। ठीक है, अल्लाह ताला का अच्छा बंदा बनना। ठीक है, फिर जो बाकी जो है ना, ये पायलट और डॉक्टर और इंजीनियर और ये सारी चीजें, ये बच्चे के को पता नहीं होती हैं। सच्ची बात ये है कि बच्चे को पता नहीं होती हैं ये बातें ना, वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो समझ ही नहीं है अभी ना, तो उसको अपने रिसोर्सेस का कुछ पता है कि भाई मेरे पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेस हैं कि मैं उनको इस्तेमाल करके आगे क्या कर सकूंगा। ठीक है, ना उसको जो है वो अपनी सलाहियतों का पता होता है। ठीक है, ना उसको अपनी चाहतों का पता होता है। बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता ना, उसका तो इल्म थोड़ा होता है, उसका तो इल्म कम होता है। और जिसका इल्म कम होता है ना, ठीक है, जिसका इल्म कम होता है ना, तो फिर वो अपनी जिंदगी के बारे में फैसले सही नहीं कर सकता है, सही फैसले नहीं कर सकता है। ठीक है, सही फैसले करने के लिए तो आपको सही इल्म की जरूरत होती है। ठीक है, हम खामखा जो है ना वो बच्चों को ड्राइव कर रहे होते हैं, हम बच्चों को ड्राइव कर रहे होते हैं असल में, डॉक्टर इंजीनियर पायलट या लायर। ठीक है, या और कोई इस किस्म की चीज की तरफ ना, वो बेसिकली बड़े उनको ड्राइव कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कि जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, ठीक है, तो उसको जो है ना वो तोहफे में टी शर्ट्स देते हैं। ठीक है, या कोई रोमपर या टी शर्ट या कोई इस किस्म की कपड़ा पहनाते हैं, तो उस कपड़े के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आई लव माई मदर, आई लव मॉमी, राइट, या किसी पे लिखा होता है आई लव डैडी। ठीक है, तो वो बच्चे को पहना देते हैं, तो बच्चे को जो वो रोमपर पहना देते हैं जिसके ऊपर आई लव मम्मी या आई लव डैडी लिखा हुआ होता है, तो क्या वो बच्चा जानता है कि ये मेरे टी शर्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है, राइट। ये सब कुछ बच्चा तो नहीं कह रहा होता ना कि आई लव मम्मी आई लव डैडी, तो ये तो मम्मी पहना रही होती हैं या मम्मी की मम्मी पहना रही होती हैं। ठीक है, ताकि दुनिया को ये लगे कि हाँ भाई ये बच्चा जो है ना ये तो मेरी बेटी का से मोहब्बत करता है। हालांकि बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता, वो तो अम्मी अपनी मोहब्बत को जो है ना वो बच्चे के ऊपर डिस्प्ले करवा रही होती हैं। ठीक है, या अब्बा की अम्मी जो दादी अम्मी होती हैं, वो अपने बेटे की मोहब्बत अपने पोते के ऊपर डिस्प्ले करवा रही होती हैं। पोते को तो कुछ पता ही नहीं होता कि भाई उसको क्या पहनाया जा रहा है, उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, तो असल में कहने का मकसद क्या है कि बड़े जो होते हैं ना वो बच्चों को ड्राइव कर रहे होते हैं, वो पुश कर रहे होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर पायलट और इन सब चीजों की तरफ, फौजी की, फौजी कोई बन बनाना चाहता है अपने बच्चे को, कोई अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहता है, कोई अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहता है, ठीक है। लेकिन एक मुसलमान का तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई जो सबसे बड़ा है वो मेरे बच्चे को क्या बनाना चाहता है, राइट। सबसे बड़ा कौन है? हमारा परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो मेरे बच्चे को क्या बनाना चाहता है। लेकिन उस बेचारे को खुद पता नहीं होता कि मेरा परवरदिगार मेरे बच्चे को क्या बनाना चाहता है, क्योंकि उसने खुद ही कभी कुरान नहीं पढ़ा होता, उसको खुद ही जो है वो कभी कुरान की तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं जाता कि भाई कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या बताया है कि मैं अपने बंदे को क्या बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमें इन बातों को सीखने की जरूरत है और अपनी सोच को जो है ना वो इस मुताबिक तब्दील करने की जरूरत है, तब हम मोमिन बनने के काबिल कहलाएंगे या मोमिन कहलाएंगे अल्लाह के नजदीक, ठीक है। बाकी आप लोगों ने क्या लिखा था, काफिरों को अपना पर्पस बनाना पड़ता है, मुसलमान को नबी ने बता दिया है मकसद। जी, हमने अपनी औलादों को सब पहले अल्लाह के मुताल्लिक बताना चाहिए, सबसे पहले अल्लाह के मुताल्लिक बताना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले बच्चे को अच्छा इंसान फिर अच्छा मुसलमान बनाना है, ठीक है। अच्छा इंसान की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा इंसान किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा इंसान तो कोई भी कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाऊं, एक हिंदू भी कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहता हूं। तो भाई हाउ डू यू डिफाइन अच्छा इंसान, ठीक है। खुद से हम डिफाइन करेंगे कि अच्छा इंसान क्या चीज होती है, या जिसने इंसान को बनाया है वो डिफाइन करेगा कि अच्छा इंसान क्या चीज होती है, ठीक है। तो अकल शरीफ तो कहती है कि जिसने बनाया है ना उसको ये राइट है कि वो डिफाइन करे कि अच्छा इंसान क्या चीज होती है, वरना तो हर बंदा ही अपनी डेफिनेशन बनाएगा ना अच्छे इंसान की। हिंदू का अपना डेफिनेशन होगी अच्छे इंसान की, और ईसाई की अपनी डेफिनेशन होगी, और एथियस्ट की अपनी डेफिनेशन होगी अच्छे इंसान की, और मुसलमान की अपनी कल्चरल डेफिनेशन होगी अच्छे इंसान की। तो अल्लाह ताला से ये डेफिनेशन हमें देनी है। ये इंसान का मकसद है जिंदगी, इसके बारे में हजरत ने बहुत तफसील बात करी थी, हमने उसको पढ़ लिया था। फिर एक फारसी का शेर में हजरत ने नकल किया था जो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह का शेर है कि जेर काने मू शगा फाने करदहर खर सत्ते अब लही। तो हमने भी इसका तर्जुमा देख के लिखा हुआ था, वरना मुझे फारसी नहीं आती, और किसी तालिबा ने भी खैर दे इसका तर्जुमा कहीं से देख करके हमें भेज दिया था। तो बहरहाल मौलाना रूमी रहमतुल्लाह शेर में फरमा रहे हैं कि दीन के मामलात में जो बारीकियां निकालने वाले नुक्ता शनास और अकलमंद लोग, दीन के मामले में बारीकियां निकालने वाले नुक्ता शनास और अकलमंद लोग, अपनी अकल के जोर पर हर मामले को परखने वाले ने अपनी नादानी और हिमाकत का निशान सब्त कर लिया, ठीक है। यानी हमारी अकल तो बस इस हद तक काबिले तकलीद है, हमारी अकल काबिले तकलीद यानी वर्दी ऑफ फॉलोइंग सिर्फ इस हद तक है कि वो हमें अल्लाह तक पहुंचाए, ठीक है ना, अल्लाह तक पहुंचाए कि हाँ भाई अल्लाह है जो कि खालिक और मालिक है, ठीक है ना। ये हमने अपनी अकल को यहां तक इस्तेमाल करना है कि भाई अल्लाह ही खालिक मालिक है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या कि अल्लाह ही हकीकत को जानता है, अल्लाह ही इस काबिल है कि वो हमें सही और गलत की तमीज बता सके, ठीक है ना, क्योंकि वो खालिक है, वही मालिक है, वही कादिर है, वही राजिक है, ठीक है। तो ये नहीं कि हम अपनी अकल बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, हम अपनी अकल इस काम के लिए इस्तेमाल करें कि भाई अल्लाह है ना खालिक, तो अल्लाह से पूछना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब हम अल्लाह ताला तक पहुंच गए तो फिर उसके बाद ये कोई थोड़ी कि नहीं अपनी अकल से जो है वो फैसला करूंगा कि क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या फायदा मंद है और क्या नुकसान है, ठीक है। तो हजरत मोनोरूम ने बेसिकली ये कहा कि जो अपनी अकल से फैसला करते हैं ना सही और गलत का, तो वो अपनी नादानी और हिमाकत का निशान सब्त कर लेते। ठीक है, आगे फरमाते हैं कि और जब मकसद जिंदगी के एतबार से जिंदा सिर्फ वो शख्स है जो वही इलाही का ताबे है और मोमिन हो। वही इलाही का ताबे यानी अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर की बातों की इत्तबा करने वाला, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर की बातों की इत्तबा करने वाला। ठीक है, वही इलाही क्या चीज होती है? पैगंबर की बातें। ठीक है, और उनका ताबे यानी उनकी इत्तबा करने वाला, तो वो जिंदा है। और मोमिन भी उसी को कहते हैं जो कि अल्लाह के पैगंबर की बताई हुई बातों के ऊपर एतमाद करता है और उनकी इत्तबा करता है। तो एतमाद करने वालों को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मुतय्यन हो गया कि जो ऐसा नहीं तो वो मुर्दा कहलाने का मुस्तहिक, वो जिंदा कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। मौलाना रूमी ने खूब फरमाया है, जिंदगी अज बहरे ताअत वो बंदगी अस्त, कि जिंदगी तो अताअत और बंदगी के लिए है। बे इबादत जिंदगी शर्मिंदगी अस्त, के जिंदगी बे बंदगी तो शर्मिंदगी है। ठीक है ना, जैसे हमारे हजरत भी ये शेर अक्सर पढ़ा करते थे कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। ठीक है, तो ये असल में मौलाना रोम के शेर से ही गोया के अखज किया हुआ एक दूसरा शेर था कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, यानी जिंदगी तो आई है बंदगी के लिए, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो वही यहां पर भी फरमा रहे हैं, बे इबादत जिंदगी शर्मिंदगी अस्त, आदमियत लहमो शहमो पोस्त नीस्त। नीस्त का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है, कहते हैं आदमी जो है ना ये गोश्त और चर्बी या खाल जिल्द ये नहीं है। आदमी गोश्त चर्बी और जिल्द नहीं है, आदमियत जुज रजाए दोस्त नीस्त। आदमियत तो दोस्त की खुशनूदी के सिवा कुछ नहीं है, दोस्त की खुशनूदी के सिवा आदमियत कुछ नहीं है। ठीक है, यानी हम आदमी जो है ना वो अल्लाह ताला की रजा के लिए बनाए गए हैं। अगर हम अल्लाह की रजा का काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम आदमी नहीं है। ठीक है, ये गोश्त पोश्त का खाली एक पुतला हो जाना ये आदमियत नहीं है। तो ये सारी की सारी डिस्कशन क्या थी कि भाई जो नबी पर एतमाद करने वाला है जिसको मोमिन कहा जाता है वो जिंदा है, और जो मोमिन नहीं है वो मुर्दा है। तो फरमाते हैं कि ये कुरानी मिसाल थी मोमिन व काफिर की, कि मोमिन जिंदा और काफिर मुर्दा है। दूसरी मिसाल इसी एक आयत के अंदर 122 आयत, ठीक है, इसी आयत में दूसरी अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान करी। वो दूसरी मिसाल क्या है? ईमान और कुफर की मिसाल। तो उसको अल्लाह ताला ने किस चीज से तशबीह दी? नूर और जुलुमात से। ठीक है, तो गोया के इस एक आयत में अल्लाह ताला ने दो मिसालें दी हैं, एक मिसाल जिंदा और मुर्दा की मोमिन और काफिर के लिए, दूसरी मिसाल नूर और जुलुमात की ईमान और कुफर के लिए। ठीक है, तो ईमान और कुफर को समझाया अल्लाह ताला ने नूर और जुलुमात की मिसाल से, और मोमिन और काफिर को समझाया अल्लाह ताला ने जिंदा और मुर्दा की मिसाल से। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने ये बात अपने पास लिख भी ली होगी और दिल पर भी आपके ये नक्श हो चुकी होगी, क्योंकि आपके परवरदिगार की बात है ना, सिर्फ मेरे परवरदिगार की बात तो नहीं है। ठीक है, परवरदिगार तो वो आपका भी है, कुरान मजीद तो आपके भी परवरदिगार का कलाम है, तो दिल के ऊपर ये बात नक्श हो चुकी होगी। आगे फरमाते हैं कि ईमान नूर है और कुफर जुलुमात। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी मिसाल है जो अल्लाह ताला ने इसी एक आयत के अंदर बयान फरमाई। तो
तो फरमाते हैं कि ईमान को नूर और कुफर को जुल्मत और अंधेरी करार दिया गया है। जरा गौर किया जाए तो ये मिसाल भी कोई ख्याली मिसाल नहीं है, यानी ऐसी बस खामखा की इमेजिनरी किस्म की बात नहीं है, बल्कि ये भी एक हकीकत का बयान है। ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद की हर बात जो है ना, ये रियलिटी है। ठीक है, अगरचे कि ये चीजें जो है वो कॉन्सेप्चुअल हैं, फिक्री बातें हैं, लेकिन फिक्र के अंदर भी तो होता है ना कि भाई एक चीज रियलिटी है जिसको आप रियलिटी समझ रहे हैं, और एक चीज जो है वो इमेजिनेशन है। ठीक है, जो कि रियल में नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने ये फैंटेसी स्टोरी टेल्स पढ़ी हैं, ठीक है, या जिन भूत वगैरह की कहानियां आपने बचपन में पढ़ी, ठीक है, तो वो जो जिन भूत की कहानियां थी, तो वो आपने पढ़ी, आपने एंजॉय किया, आपका बहुत ज्यादा वक्त जो है वो उस किस्म की कहानियां पढ़ने में लगा, या खुदा न खास्ता आपने जो है वो इस किस्म की मूवीज देखी, जैसे डिज्नी की मूवीज होती हैं, राइट, इस किस्म की जो है वो सिंडरेला के आपने कहानियां पढ़ी और पता नहीं और क्या क्या इस किस्म की चीजें है ना भाई। तो वो जो चीजें हैं वो आपने सुनी, आपने पढ़ी, लेकिन आप उनको हकीकत नहीं समझ रहे। ठीक है, अगर बहुत छोटे थे तो उस वक्त शायद समझते होंगे कि हाँ वाकई ऐसा होता है, वाकई ऐसे ड्वार्फ्स होते हैं, वाकई ऐसी सिंड्रेला होती है, वाकई ऐसी जो है वो यानी पता नहीं क्या था वो, अजीब अजीब नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे, बचपन में शायद समझती हूँ, लेकिन थोड़े बड़े हो गए तो अब पता चल गया कि नहीं यार वो बस ना कहानी के अंदर थी, वो हकीकत में कोई थोड़ी होता है इस तरह से। कुरान मजीद के अंदर ये जो बात हैं, क्या हम इनको भी सिंडरेला की कहानियां समझ रहे हैं? नहीं, क्या इनको भी हम जो है वो इसी तरह के फेरी टेल समझ रहे हैं, या डिज्नी की कोई म्यूजिक समझ, कोई वीडियो समझ रहे हैं, या जिन भूत की कोई बचपन में लिखी हुई कहानियां जो हमने पढ़ी थी वो समझ रहे हैं? नहीं, राइट, अगर ये समझ रहे हैं तो फिर वाकई हम काफिर हैं, वाकई में हम काफिर हैं। ठीक है, लेकिन ईमान वाले हैं तो फिर तो हम इनको हकीकत समझेंगे ना, यानी रियलिटी। बेशक वो हमें सामने कोई 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 चलती फिरती चीजें नजर नहीं आ रही ना, ठीक है, कि जैसे कोई नूर चलता हुआ जा रहा है, फिर इधर से जो है वो जुल्मत आ गई, या इधर से जो है वो काफिर जो है ना वो मरा हुआ पड़ा हुआ हमें नजर आ रहा है, राइट, काफिर तो हमें मरा हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, और सिर्फ मोमिन जो है वो चलते फिरते नजर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सारी बातें हमारी आंखों से नजर नहीं आने वाली हैं, बल्कि ये फिक्री बातें हैं। लेकिन क्या ये तखयल है या ये
अच्छा,
हकीकत है? ये डिफरेंस है, दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। एक काफिर इन बातों को पढ़ेगा, वो उनको तखयलाती बातें समझेगा, लेकिन जो मोमिन होगा वो उनको हकीकत समझेगा। ठीक है, तो वही हजरत फरमा रहे हैं कि ये कोई ख्याली मिसाल नहीं है, बल्कि एक हकीकत का बयान है। यहां भी रोशनी और अंधेरी के असल मकसद पर गौर किया जाए, फिर वही बात, मकसद, असल चीज क्या होती है? मकसद। ठीक है, तो जिस तरह जिंदा और मुर्दा के मकसद पे बात हुई थी पीछे, और अब जो है वो रोशनी और अंधेरी के मकसद पर बात हो रही है, तो असल मकसद पर गौर किया जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी कि रोशनी का मकसद क्या है। वो ये है कि उसके जरिए नजदीक और दूर की अशिया को आप देख सके। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने ना हमें ऐसा बनाया है कि हम अंधेरे में देख नहीं सकते, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइट फॉर अस? द पर्पस ऑफ लाइट फॉर अस इज सो दैट वी आर एबल टू सी। ठीक है ना, अगर किसी को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो अंधेरे में भी देख सकता है, तो उसके लिए पर्पस ऑफ लाइट विल नॉट बी द सेम, राइट, उसके लिए तो पर्पस ऑफ लाइट जो है वो ये कह सकते हैं अभी पर्पज ऑफ लाइफ जो है ना वो ये है कि वो एक मिनट हल्ला जी सॉरी। तो उसके लिए पर्पज ऑफ लाइफ जो है ना फिर वो ये होगा कि मे बी ही फील्स गुड, ठीक है ना, रोशनी होती है तो उसको अच्छा महसूस होता है और अंधेरा होता है तो शायद उसको अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन नजर आना वो तो वो अंधेरे में भी देख सकता है, तो इस वजह से रोशनी का मकसद उसके लिए ये नहीं है कि उसको चीजें नजर आती हैं रोशनी में। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो रोशनी का मकसद ये है कि हमें नजर आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए रोशनी का मकसद ना, ठीक है, दूर की चीजें भी नजर आए, करीब की चीजें भी नजर आए, जिसके जरिए जिसके नतीजे में फिर क्या हो कि मुजर चीजों से बचने और मुफीद को इख्तियार करने का मौका मिले, ठीक है। तो ये है रोशनी, खाली देखना भी नहीं, आप देख रहे हैं और देख करके जाना वो आप यानी खुश हो रहे हैं बस, ठीक है, कि हाँ भी मुझे चीजें नजर आ रही हैं। भाई अगर कोई चीज आपको नुकसान पहुंचाने वाली आ रही है तो क्या आप बैठे रहेंगे देखते रहेंगे उसको, हाँ यार मैं देख सकता हूँ मैं देख सकता हूँ मैं देख सकता हूँ, नहीं, वो आप मारने के लिए आ रहे, तो अब आपको बचने का तदबीर भी करनी पड़ेगी ना, ठीक है। और फिर उसी तरीके से कोई चीज आपको फायदे वाली नजर आ रही है तो आप उसको इख्तियार भी कर लें, ये तो नहीं कि फायदे वाली चीज आपके सामने आई और आकर के गुजर गई और आप बैठे देखते रहे कि हाँ यार मुझे नजर तो आ रही है ना कम से कम तो मैं इसको देखूं, नहीं भाई, मतलब फायदे वाली चीज को हासिल कर लेना चाहिए ना, नुकसान वाली चीज से बचना चाहिए ना, ठीक है। तो रोशनी का मकसद फिर ये बना, ठीक है, कि फायदे वाली चीज को हासिल करें जल्बे मनफात और नुकसान वाली चीज से बचें दफ़ाए मुवर्रत। अब ईमान को देखो कि वो एक नूर है कि जिसकी रोशनी तमाम आसमानों और जमीन और उन सब से बाहर की तमाम चीजों पर हावी है, यानी ये एक ऐसी रोशनी है ईमान की रोशनी जो कि सिर्फ आसमान और जमीन के अंदर की चीजें नहीं दिखाती बल्कि आसमान और जमीन के बाहर की चीजों के बारे में भी बताती है, ईमान, ठीक है, यानी नबी पर एतम। तो नबी की बातें जो है ना वो फिर सिर्फ ये नहीं, अच्छा ये भी नहीं कि सिर्फ आसमान और जमीन के बाहर की बातें बताती है, आसमान और जमीन के अंदर की बातें नहीं बताती, नहीं, नबी ने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान जमीन के अंदर के फायदे भी बताए, अंदर के नुकसान भी बताए, जैसे कि जिस्मानी सेहत के फायदे की बातें नबी अलैहिस्सलाम ने बताई और जिस्मानी सेहत की नुकसान की बातें नबी अलैहिस्सलाम ने बताई, राइट, कि भाई रात को सोया करो दिन में जागा करो, ठीक है। तो अब ये हमने जो स्लीप मैनेजमेंट का पूरा वो मजमून पढ़ा है उमूर खानदारी के क्लास के अंदर, तो उसमें तो जिस्मानी सेहत के बारे में बातें थी ना, जिसका इम्पैक्ट रूहानी सेहत पर भी पड़ता है, लेकिन इमीडिएटली तो जिस्मानी सेहत का पड़ता है। वजअलना लैला नहारा, वजअलना क्या है, लैला लिबासा, वजअलना नहारा माशा, मईशत के लिए जो है वो दिन का वक्त अल्लाह ताला ने बनाया, तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताई है ना हमारी बातें। और भी कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ठीक है, तो ये भी तो जिस्मानी सेहत के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का ना। तो जमीन आसमान के अंदर की चीजें भी और जमीन आसमान के बाहर की चीजें भी, जैसे अर्श, ठीक है, जन्नत और जहन्नुम, ठीक है, तो ईमान की रोशनी तमाम चीजों पर हावी है, यानी हर जगह पहुंचती है। सिर्फ यही रोशनी पूरे आलम के अंजाम और तमाम उमूर के सही नतायज को दिखा सकती है, जिसके साथ ये नूर हो तो वो खुद भी तमाम नुकसानदेह व मुजर चीजों से बच सकता है और दूसरों को भी बचा सकता है, और जिसको ये रोशनी हासिल नहीं वो खुद अंधेरे में है, मजमुआ आलम और पूरी जिंदगी के एतबार से क्या चीज नाफे है क्या मुजर है यानी नुकसानदेह है इसका वो कोई इम्तियाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नजर ही नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, सिर्फ पास पास की चीजों को टटोल कर कुछ पहचान सकता है। ठीक है, अब देख लें, हम अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि अगर हम किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं तो अब उस अंधेरे कमरे में अपना रास्ता मुतय्यन करने के लिए कि कहां मुझे बैठना चाहिए, कहां मुझे चलना चाहिए, आपको क्या करना पड़ता है, टटोलना पड़ता है। ठीक है, तो हाथ के और पैर के टच वाले सेंस को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उससे आपको बड़ी मुश्किल से कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि अंधेरा है तो अब आपको कुछ भी नहीं पता चल सकता, नहीं, कुछ पता चल जाता है आपको टटोलने से। ठीक है, लेकिन शख्स ये कहे कि यार टटोल के कुछ तो पता चल जाते हैं ना, बस यही काफी है, बस यही बहुत अच्छा है, रोशनी वोशनी की कोई जरूरत नहीं है, जब टटोल करके चीजों का पता चल जाता है तो काफी है, रोशनी की क्या जरूरत है भाई। ठीक है, तो उस शख्स को आप क्या कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। ठीक है, उसको कहेंगे कि भाई ये इतने थोड़े के ऊपर राजी हो गया है। ठीक है, और इसको अंदाजा ही नहीं है कि भाई अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल फ्लाई करती हुई इसकी तरफ आएगी तो टटोल करके तो उसको उस चीज का पता नहीं चलेगा ना, तो फिर वो अपने आप को उस चीज से कैसे बचाएगा, है ना भाई। कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है जो उसको अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा, तो क्या ये टटोल करके अपने आप को उस वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बचा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस वजह से रोशनी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, लेकिन कोई बेवकूफ शख्स कहना शुरू कर दे कि नहीं, टटोल करके पता चल जाता है, बस काफी है, रोशनी की जरूरत नहीं है, तो उसको बेवकूफी कहा जाएगा ना। यही मामला हमारा भी है कि काफिर जो है वो टटोल टटोल करके कुछ चीजों को अगर पता करके कोई फायदे की चीज बना लेता है, कोई नुकसान की चीज से बचने का इंतजाम कर लेता है, तो हम कहते हैं कि यार ये बहुत है, ये काफी है, ईमान की रोशनी की क्या जरूरत है। हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि ईमान की रोशनी की जरूरत क्या है, जब बगैर ईमान की रोशनी के टटोल के इतने ये चीजें बना ली हैं, तो हम भी इसी तरीके से कर लेंगे, हमें भी ईमान की रोशनी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ा फिर बेवकूफ कौन होगा। ठीक है, हालांकि हम ईमान की रोशनी को आसानी के साथ, हमारे पास तो एक्सेस था, उस ईमान की रोशनी के बटन का एक्सेस हमारे पास मौजूद था कि हम उसको बस दबाएं, हमारे पास ईमान की रोशनी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि हम ईमान की रोशनी के बटन को दबाते, हम काफिर के छोटे छोटे फायदे और छोटे छोटे नुकसान से बचने वाले जो कामयाबियां उसकी हमें नजर रही हैं छोटी छोटी सी, हम उसके ऊपर मुतमईन है कि यार इतनी अच्छी जिंदगी काफिर की गुजर रही है टटोल 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 करके, तो मैं भी टटोल 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 करके ही जिंदगी गुजारूंगा, टटोलने का लफ्ज भी मेरे लिए अदा करना मुश्किल है, तो वो चूंकि टटोल टटोल करके जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है मेरे हिसाब से, उसी तरह मैं भी टटोल टटोल करके अच्छी जिंदगी गुजार लूंगा, ईमान की रोशनी के बटन को दबाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो हमारी बिल्कुल इस वक्त यही कैफियत है, हमारी बिल्कुल इस वक्त यही कैफियत है, हम ईमान के बटन को ऑन करने की फिक्र में नहीं। ठीक है, तो ईमान के बटन को ऑन करने के लिए तो फिर ईमान के तकाजे होते हैं, वो तो हमने पूरे नहीं करने, तो इस वजह से हमने हमने एक अजीब, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारा हाल पता है क्या है, हम मुसलमानों का हाल पता है क्या है, हम मुसलमानों का हाल ये है कि अगर आप अपनी आंख को बहुत जोर से बंद करें, टाइट भींचना जिसको कहते हैं ना, आंखों को भींचने, ठीक है, तो बहुत टाइट करके अगर आप अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, एक अजीब सी जो है ना वो आपको लगेगा, अभी जरा करके देखें ना, आपको आंखें खोलना कोई जरूरी तो नहीं है, मेरी तो आवाज आपके कान से आ रही है ना, तो आंखों से तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो आप जरा आंखें बंद करें और ऐसे हल्के से बंद नहीं करें बल्कि जरा जोर से बंद करें, तो जोर से बंद करने से पता है क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लाइट सी रोशन हो गई है। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आपकी आंखों के सामने कोई रोशनी आ गई है। ठीक है, लेकिन वो असल में रोशनी नहीं है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि वो रोशनी है, क्योंकि रोशनी तो भाई आपके, यानी ये जो फिजिकल रोशनी होती है, ये तो बाहर की चीज होती है ना, बाहर बाहर रोशनी होती है। आंखों को बंद करने से आपकी आंखों के अंदर तो रोशनी नहीं आ सकती, लेकिन इमेजिनरी तौर पर गोया के रोशनी आ जाती है, हालांकि वो अंधेरा है। तो हम जो है ना इस कैफियत में इस वक्त हैं कि हमने अंधेरे को रोशनी तस्वर करना शुरू कर दिया, हमने अंधेरे को रोशनी तस्वर करना शुरू कर दिया, ठीक है। हालांकि हम अंधेरे में, क्यों अंधेरे में? इसलिए कि हम कुरान अल्लाह के कलाम से हिदायत नहीं हासिल कर रहे, इस वजह से हम अंधेरे में, ठीक है। लेकिन हमने इमेजिनरी तौर पर अपने आप को जो है ना वो रोशनी में तस्वर कर लिया है, रोशनी में तस्वर किया हुआ है, ठीक है। तो भाई इमेजिन कर लेने से तो कोई चीज नहीं हो जाती ना, कोई चीज होने के लिए उसका जो तरीका है उस तरीके को फॉलो करना पड़ता है, वो हमने करना नहीं है। तो हमने कहा कि, यानी ऐसे ही है कि जैसे वो एक लोमड़ी जा रही थी, तो लोमड़ी को जो है ना वो अंगूरों की बेल नजर आई, लेकिन वो अंगूरों की बेल जो थी ना वो जरा ऊंच, वो एक दरख्त पे चढ़ी हुई थी वो बेल, क्योंकि बेल होती है ना वो अंगूरों की, तो क्या कहते हैं उसको, वाइन कहते हैं बेल को, तो वो ऊपर चढ़ी हुई थी ना। तो अब इसको वो बड़े लजीज और बड़े मीठे अंगूर लगे ना, तो इसने जो है ना वो छलांग मार करके अंगूरों को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन जितनी ऊंची छलांग मारती अंगूर जो है ना वो उसकी पहुंच से बाहर ही होते। तो ये बड़ी कोशिश करने के बाद जब अंगूर इसके हाथ में नहीं आए ना, तो इसने ये कहना शुरू कर दिया, ये कहते हुए वहां से चल पड़ी कि यार अंगूर खट्टे हैं, ये अंगूर खट्टे हैं। भाई खट्टे कैसे हैं? पहले तो आप तो इसको बड़ा मीठा समझ करके बड़ी छलांगे मार रही थी इसको, लेकिन अब आपके हाथ में नहीं आया, तो अब आपने अपने आप को खुश करने के लिए ये कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, तो आपके खट्टा कहने से अंगूर खट्टे तो नहीं हो जाते, लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए, ताकि वो फेलियर का जो है ना एक डिप्रेशन ना हो, फेलियर की डिप्रेशन ना हो, तो अपने आप को खुश करने के लिए कुछ कह दो। ये भी हमारा मामला है, ठीक है, कि हमने अपने आप को खुश करने के लिए ना कह दिया, हम तो ईमान वाले हैं, हम तो मोमिन हैं, ठीक है, लेकिन मोमिन के लिए जो काम करने थे वो हमें करने नहीं है, वो तो हम कर ही नहीं रहे। हम तो, लोमड़ी ने तो चलो बड़ी छलांगे मारी, बड़ी कोशिशें करी, लेकिन वो अंगूर तक पहुंच नहीं सकी। हमारा तो हाल ये है कि हम छलांग भी नहीं मारते, हम कोशिश भी नहीं करते, ठीक है, बल्कि चलते चलते ना बस ऐसे ही, ओ नहीं हमने तो उधर देखना ही नहीं है ना, तो इस वजह से हम छलांगे मारे बगैर ही कहना शुरू कर देते हैं कि तुम कौन से वाले ईमान करो, ये ईमान तो मेरे पास पहले से है, ये तो मेरे पास पहले से है। गोया कि जैसे कि लोमड़ी जो है ना वो अंगूरों को देख करके, बजाय इसके कि वो छलांगे मार करके अंगूरों अंगूरों को तोड़ने की कोशिश करती, उसने एक भी छलांग नहीं मारी, और वो ये बस कहना शुरू हो गई कि यार मेरे पास तो पहले से इतने मीठे अंगूर मौजूद, मेरे पास तो पहले से ही मीठे अंगूर मौजूद हैं, और ये कह करके वो चलती पड़ी, चलती बनी। हमारा इस वाली लोमड़ी जैसा हाल हमारा है, हमारा हाल इस वाली लोमड़ी जैसा है कि जिसने छलांगे भी नहीं मारी, और खुद ही बगैर छलांग मारे ही, बगैर कोशिश किए ही उसने ये कह दिया कि मेरे पास मीठे अंगूर पहले से मौजूद हैं, मुझे उन अंगूरों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं फिर होता ना काम, ठीक है। तो भाई ईमान के लिए तो कुरान मजीद को जो है ना वो सही मानों में, यानी अब मैं कहूंगा घोल के पीना, तो पता नहीं आपने भी कहीं कुरान मजीद के कागजात को घोलने वोलने की कोशिश ना शुरू कर दें आप लोग, ठीक है। तो लेकिन मुहावरतन घोल के पीना है ना, वो हमें तो कुरान मजीद को घोल के पी लेना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि इसी में अल्लाह ताला बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बहरहाल, तो काफिर जो टटोल टटोल करके पहचान रहा था ना, तो हजरत उसके बारे में कहते हैं कि सिर्फ पास पास की चीजों को ना अंधेरे में तो फिर टटोल कर ही पहचाना जा सकता है, मौजूदा दुनिया की जिंदगी यही आसपास का माहौल है, और काफिर इस जिंदगी और उसके नफा नुकसान को तो पहचान लेता है, मगर बाद में आने वाली दायमी जिंदगी की उसको कुछ खबर ही नहीं होती, ना उसके नफा वह जरर का उसे कुछ इदराक है। ठीक है, क्योंकि वो दूर की चीज है ना, टटोल को टटोल के तो आप दूर की चीजों को नहीं मालूम कर सकते, उसके लिए तो रोशनी की जरूरत पड़ेगी। कुरान करीम ने इसी मजमून के लिए इरशाद फरमाया, ठीक है, क्या फरमाया, यालमूना वाहिरम मिनल हयात दुनिया वहुम अनिल आखिरती हम गाफिल। ठीक है, इसका कॉन्टेक्स, इसका बल्कि इससे पहले वाली आयत क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युखलिफुल्लाहु वादा वादा, कि अल्लाह ताला अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता, वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर इंसान नहीं जानते इस बात को, यानी नहीं मानते इस बात को कि अल्लाह ताला अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। ठीक है, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? क्या हम अल्लाह ताला की इस बात को सच्चा जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता या नहीं? ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लोगों के बारे में जो कि इस बात को नहीं मानते कि अल्लाह ताला अपने वादा खिलाफ ही नहीं करता, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर या अलमून बाहिरम मिनल हयात दुनिया, वो दुनिया की जिंदगी की जो चंद जाहिरी चीजें हैं ना, यानी करीब करीब की जो चीजें हैं, उनका तो वो इल्म रखते हैं, लेकिन वहुम अनिल आखिरती, आखिरत के बारे में वो गफलत में है। ठीक है, यानी उनको आखिरत के बारे में कुछ पता नहीं कि आखिरत की क्या हकीकत है। ठीक है, वहां पे कैसे आमाल का हिसाब किताब होगा, वहां पे कैसे जो है वो नेमतों का जो है वो हिसाब देना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको नहीं है। दूसरी एक आयत में पिछली मुनकिर और काफिर उम्मतों का जिक्र करने के बाद कुरान करीम ने फरमाया है वह कानू मुस्तबसरीन, यानी आखिरत के मामले में ऐसी शदीद गफलत और बेअकली बरतने वाले इस दुनिया में बेवकूफ नादान नहीं थे। क्या मतलब बेवकूफ नादान नहीं थे? दुनियावी एतबार से बेवकूफ लोग नहीं थे, बल्कि हाईली एकॉम्प्लिश्ड किस्म के लोग थे। दुनियावी एतबार से उन्होंने ब्रिजेस बनाए थे, स्काई स्क्रेपर्स बनाए थे, उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी थी, उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बनाई थी, उन्होंने जो है वो, आजकल सुनने में आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पुरानी चीज हो जाएगी, एक नई चीज आ रही है जिसको क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी उसने पीछे छोड़ दें। ठीक है, तो ये लोग जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजें ईजाद करते हैं। ठीक है, स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं। अब जी वो आम बंदा भी जो है वो इनके क्या नाम है उसका, इलॉन मस्क के स्पेस एक्स प्रोग्राम के तहत आम बंदा भी जो थोड़े से पैसे देकर के, आम बंदे से मुराद ये है कि उसको कोई बाकायदा एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग हासिल करने की जरूरत नहीं होती, बस पैसा चाहिए होता है, पैसा पे करे और आपके स्पेसशिप में बैठे, इलॉन मस्क के स्पेस एक्स की स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैठे और वो स्पेस में पहुंच सकता है। इतना आसान हो गया स्पेस ट्रैवल करना। ठीक है, तो ये लोग जो है ना, ये कोई दुनियावी एतबार से बुद्धू किस्म के लोग नहीं है कि इनको सिर्फ घास काटना आता था, राइट, या इनको जो है ना वो सिर्फ झाड़ू पोछा देना आता है और कुछ भी नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बड़े जहीन किस्म के लोग हैं, आइंस्टाइन किस्म के लोग हैं। ठीक है, तो फरमाते हैं कि वकानू मुस्तबसरीन, यानी आखिरत के मामले में ऐसी गफलत और बेअक्ली बरतने वाले इस दुनिया में बे नादान लोग नहीं थे, बल्कि मुस्तबसिरीन यानी रोशन ख्याल लोग थे। एक से एक जो है ना वो शेरो शायरी करने वाले और जो है वो किताबें लिखने वाले और फलसफी किस्म के लोग, मगर ये जाहिरी सतही रोशन ख्याली सिर्फ दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के सवारने ही में काम दे सकती है, आखिरत की दायमी जिंदगी में इसने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, इधर आंख बंद हुई, इधर इनकी सारी की सारी इंटेलिजेंस खाक में मिल गई। ठीक है, तो अल्लाह ताला ना ये जो कुरान मजीद के अंदर इन पाओं के अहवाल बयान करते हैं, वो सिर्फ माजी की कहानियां नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली वही मामला हमारे सामने भी हो रहा है। ठीक है, हम जिन लोगों को बहुत कामयाब समझ रहे हैं, तो भाई वो तो टटोल टटोल करके, इंच इंच करके जो है वो दुनिया की कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन आखिरत में तो वो नाकाम है ना। लेकिन हमने चूंकि बिल्कुल उन्हीं को अपना मुक्तदा बनाया हुआ है, उन्हीं पर एतमाद किया हुआ है, तो इस वजह से हम भी टटोल टटोल करके आगे बढ़ने की रविश के ऊपर अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, और अपने औलादों को भी बड़े फखर के साथ इसी लाइन के ऊपर डाल रहे होते हैं। इस तफसील को सुनने के बाद कुरान मजीद की आयत मजकूर को फिर एक मरतबा पढ़ लीजिए। अवमन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मथलुहू फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिन मिन्हा। मतलब यह है कि वो शख्स जो पहले मुर्दा यानी काफिर था, फिर हमने उसको जिंदा कर दिया यानी मुसलमान बना दिया, और हमने उसको एक ऐसा नूर यानी ईमान दे दिया जिसको लिए हुए वो लोगों में फिरता है। इस शख्स के बराबर हो सकता है जिसकी मिसाल ऐसी है कि वो किस्म किस्म की अंधेरियों में घिरा हुआ है जिससे निकलने ही नहीं पाता, यानी कुफर की अंधेरियों में मुबतला है, वो खुद ही अपने नफा नुकसान को नहीं पहचानता और हलाकत से नहीं बच सकता, दूसरों को क्या नफा पहुंचा सकता है। ठीक है, वो दूसरों को क्या नफा पहुंचा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई उसकी अताअत करेगा तो जिस तरह से वो नुकसान में है, ये अताअत करने वाला भी नुकसान में ही जाएगा। भाई कोई बंदा घड़े में गिर रहा है, आप उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दें तो क्या ख्याल है, वो घड़े में गिरेगा तो आप नहीं गिरेंगे? भाई आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपने भी घड़े में गिरना है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस आयत से, पिछली जो आयत थी ना जो हमने इससे पहले की क्लासों में पढ़ी थी, आयत नंबर 121, ये 122 है ना, 121 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, व इन अतअतुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून। अगर तुमने इनकी अतात करी ना तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे, तुम भी मुशरिक हो जाओगे। ठीक है, तो अब हम अजीबो गरीब किस्म के मुसलमान हैं या अपने आप को मुसलमान समझते हैं अजीबो गरीब किस्म के लॉजिक के तहत, अतात हम उनकी करते हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं, किस बुनियाद पर भाई? आमाल की बुनियाद पर। जी हमने नमाजें पढ़ी हैं, हमने रोजे रखे हैं, हमने जकात दी है, हमने जो है वो हज किया है, हम उमरे करती हैं, हम बुरका भी पहन लेती हैं, हम पर्दा भी कर लेती हैं, क्यों क्यों करते हो? क्या नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद की वजह से ये सारे काम कर रही हो, प्रेशर की वजह से ये सारे काम कर रही हो, पीयर प्रेशर की वजह से, हालात के प्रेशर की वजह से, मुआशरे के प्रेशर की वजह से, या नबी पर एतमाद की वजह से? ये हम अपने आप से पूछ लें इससे पहले कि टू लेट हो जाए मामला, आंख बंद हो गई ना तो उसके बाद फिर पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा अपने आप से, राइट? कि कम से कम पूछते तो शायद फिर कोई गलत जवाब मिलता तो फिर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इसी वक्त हमें पूछ लेना चाहिए कि हम नबी पर एतमाद, कुरान मजीद पर एतमाद की वजह से पर्दा कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, वो तो वो भी बहुत कम लोग ही करते हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं? ठीक है, या हम भेड़ चाल की वजह से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी ने हमें बता दिया था कि भाई ये कर लोगे तो मुसीबत दूर हो जाएगी, ये नहीं करोगे तो मुसीबत दूर नहीं होगी, वही दुनियावी मुसीबतें दूर नहीं होंगी, आखिरत की मुसीबत दूर होने की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया में मुसीबत, जॉब चली गई, ओह जल्दी से पर्दा कर दो, पर्दा कर दो, पर्दा कर लो, जॉब वापस आ जाएगी, जॉब वापस आ, शौहर की जॉब चली गई है, अब तो पर्दा कर लो ताकि जॉब वापस आ जाए शौहर की, इस वजह से पर्दा करना शुरू कर दिया, ये शौहर की जॉब वापस आ जाएगी, शौहर की जॉब वापस आ जाएगी, इस वजह से पर्दा शुरू कर दिया, या नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। ठीक है, तो इन्होंने सवाल भी कर लिया, इनको जवाब भी कर लिया, माशाल्लाह, अल्लाह का हुक्म को मानते हुए पर्दा करना है, हाँ ये तो करना है। ठीक है, तो ईमान तो इसको कहते हैं ना, ईमान ये कोई थोड़ी होता है कि जी वो फलानी मुसीबत आ जाएगी या कोई जो है वो मारना शुरू कर देगा, इस वजह से जो है वो नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो चलो भाई ईमान, ये ईमान वाले बन गए किसी के पिटाई के डर की वजह से, यानी दुनिया में किसी की पिटाई के डर की वजह से नमाजें पढ़नी शुरू कर दी, चलो जी ईमान वाले बन गए नमाजें पढ़ के। भाई आखिरत की पिटाई के डर की वजह से, क्योंकि आखिरत तो हमें नजर नहीं आती ना, वो तो एतमाद से पर एतमाद की बुनियाद पर हम डर रहे हैं ना जहन्नुम से, देख करके को थोड़ी डर रहे हैं जहन्नुम से। तो अगर एतमाद की बुनियाद पर जहन्नुम से डर रहे हैं, इसको ईमान कहा जाता है। और दुनिया की पिटाई को देख करके डर के अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ये ईमान नहीं है, ये ईमान नहीं है। तो अतात हम काफिर की करें और आमाल की बुनियाद पर अपने आप को मुसलमान समझ रहे हो, तो फिर आपका और हमारा इस्लाम कुरान मजीद वाला इस्लाम नहीं है, ये फिर अपना बनाया हुआ इस्लाम है, ये अपना बनाया हुआ इस्लाम है। कुरान मजीद का इस्लाम तो क्या है, वह इन अतातुमूहुम इन्नकुम लमुश्रिकून, ठीक है ना। इन्होंने लिखा है कि पहले तो भेड़ चाल की वजह से ही करते थे, लेकिन जब से पता चला अल्लाह का हुक्म है तौबा करके नियत से ही कर ली। बिल्कुल सही है, इतना ही करना होता है बस, तौबा करके नियत को सही कर लेना होता है, अल्लाह ताला से बात करें, अल्लाह ताला से अल्लाह माफ कर दीजिए, अब तक मैं भेड़ चाल की वजह से कर रही थी, अल्लाह अब पता चल गया है, अब मैं आपके लिए करूंगी, आपके लिए कर रही हूं, ये अल्लाह से बात, मुझसे किसी पीर साहब से, किसी मौलवी साहब से, किसी मुफ्ती साहब से, किसी अम्मी डैडी पप्पा खालू चचा किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से, ठीक है। अब तक ए अल्लाह आप जानते हैं मैं क्या कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, और अल्लाह आगे जो है ना, मैं अभी आपसे इरादा करती हूं, मैं एतमाद अलन नबी की वजह से यह काम किया करूं, बस खलास हो गई तौबा, ठीक है। फिर अल्लाह ताला से मदद भी मांगने, अल्लाह इरादा तो कर लिया मैंने आपसे, लेकिन आप भी जानते हैं मैं कितनी कमजोर हूं, पता नहीं अभी मैंने इरादा किया थोड़ी देर बाद मेरा इरादा बदल ना जाए, अल्लाह इस पर इस्तेकामत आप अता फरमा दीजिए, नहीं इस पर इस्तेकामत, इसके ऊपर दवाम, इसके ऊपर पाबंदी आप अता फरमा दीजिए, मैं आपकी मदद के बगैर ये भी नहीं कर सकती, अभी तो कर लिया सुन करके, लेकिन इसके ऊपर कायम रहना मेरे बस की बात नहीं है, अल्लाह आप मुझे कायम करवा दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ उठक बैठक उमरे शुमरे कुछ कुछ नहीं करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से अमाल की तौफीक मांगे, फिर अल्लाह ताला अमाल की तौफीक देगा, फिर उमरे भी करते रहिएगा, फिर हज भी करते रहिएगा, फिर जो है वो नमाज और रोजे जकात सब कुछ करिएगा, वो सब अल्लाह ताला करवाएंगे फिर आपसे, ठीक है। अच्छा, नूर ईमान का फायदा दूसरों को भी पहुंचता है। इस आयत दूर यमशी भी फिन्नास फरमाकर इस तरह भी हिदायत कर दी है कि नूर ईमान सिर्फ किसी मस्जिद या खानका या गोशा व हुजरे के साथ मखसूस नहीं, कि भाई खानका में बैठे हुए तो नूर ईमान है, खानका से बाहर निकले ईमान का नूर उधर ही रह गया, खानका के अंदर रह गया, नहीं। जिसको अल्लाह ताला ने ये नूर दिया है वो उसको लेकर सब जगह लोगों के रजम व बजम में लिए फिरता है, छोड़ करके नहीं आता मस्जिद के अंदर, और हर जगह इस रोशनी से खुद भी फायदा उठाता है और दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है। नूर किसी जुल्मत से दब नहीं सकता, कैसी जबरदस्त बात फरमा रहे हैं, नूर जो है ना वो जुल्मत से दब नहीं सकता, जैसे कि मुशाहिदा भी है कि एक टमटमाता हुआ चिराग भी अंधेरे में मगलूब नहीं होता कि अंधेरा गालिब आ गया इसने टमटमाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, रोशनी से तो सॉरी हवा से तो चिराग बुझ जाता है, अंधेरे से कभी देखा है चिराग को बुझते हुए, कि अंधेरा ज्यादा था डर के मारे चिराग साहब जो है ना वो बुझ गए, ऐसा कभी देखा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अंधेरा नहीं गालिब आ सकता रोशनी के ऊपर, हाँ उसकी रोशनी दूर तक नहीं पहुंचती, ठीक है, तेज रोशनी होती है तो दूर तक फैलती है,
कम होती है तो थोड़ी जगह को रोशन करती है, मगर अंधेरी पर बहरहाल गालिब रहती है। ठीक है, अंधेरी उस पर गालिब नहीं आती, वो रोशनी ही नहीं जो अंधेरे से मغلوب हो जाए, जो अंधेरे से मغلوب हो जाए वो रोशनी है ही नहीं। अब अपने दिल में टटोल के देखें कि हम किसी के कुफर से जो मغلوب हो जाते हैं, राइट, हम थोड़ा सा पर्दा शुरू करते हैं और उधर से आंटी ने बोल दिया ये क्या कर रही हो, ये भी कोई करने की चीज है, उधर ही हमारा पर्दा खत्म, राइट। थोड़ा सा हमने जो है वो कुछ करना शुरू किया, ईमान की हिफाजत की बात शुरू करी, बच्चों की जो है ना वो सही तालीम और तरबियत की बात शुरू करी, उधर से जो है वो हमारी सास आई या हमारी अपनी अपनी मदर आई और उन्होंने कह दिया कि क्या कर रही हो तुम अपने बच्चे के साथ, ये तो जाहिल रह जाएगा, ये तो अंगूठा छाप रह जाएगा अगर तुमने इसको स्कूल से निकाल दिया, उधर ही हमारा सब कुछ खत्म, फौरन पलट जाते हैं, फौरन पलट पलट जाते हैं एकदम से ना, उधर से किसी ने आके कोई ताना दे दिया, उधर से किसी ने आके कोई ताना दे दिया, फौरन हमारा सब कुछ जो है ना वो, यानी जिस तरह से एक इमारत जमींबोस हो जाती है, हमारा रिजॉल्व हमारा इरादा उसी तरीके से जमींबोस हो जाता है, समझते हैं ना जमींबोस का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये कौन सा वादा आपका ईमान था कि जो के ऐसे अंधेरे से मغلوب हो गया। तो हजरत फरमा रहे हैं और 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये रोशनी थी ही नहीं, ये रोशनी थी ही नहीं जो ऐसे मغلوب हो गई। भाई अगर रोशनी होती ना तो वो ज्यादा लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कम अज कम आपको तो फायदा पहुंचाती रहती ना, आप खुद तो कायम रहते ना भाई। ठीक है, आप अगले बंदे को कन्विंस नहीं कर पा रहे, यानी आपकी रोशनी आपसे एक्सटेंड होकर के आपकी सास तक नहीं पहुंच पा रही, आपके शौहर तक नहीं पहुंच पा रही, आपके जो है वो औलाद तक नहीं पहुंच पा रही, आपके पड़ोसी तक नहीं पहुंच पा रही, आपके फ्रेंड तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, आपकी रोशनी अभी इतनी ज्यादा तेज नहीं हुई है, इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इट्स रोशनी अगर वो आपको फायदा पहुंचा रही है। लेकिन अगर वो फौरन मगलूब हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो रोशनी है ही नहीं, वो रोशनी है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह वो ईमान ही नहीं जो कुफर से मगलूब या मरऊब हो जाए, होता ना सेकंड जज करना शुरू हो जाए, ओह क्या वाकई वो ठीक भी था जो मैं कर रही थी, राइट, अपने आप को क्या कहते हैं उसको, सेकंड जज करना ही कहते हैं ना शायद, नहीं, यानी शक में मुब्तला हो जाए, क्या वो ठीक था भी जो मैं कर रही थी अब तक। इसका मतलब ये है कि वो ईमान था ही नहीं। ये नूरे ईमान इंसानी जिंदगी के हर शोबे, हर हाल, हर दौर में उसके साथ है। एक अगला बंदा भी आपके नूरे ईमान से फायदा अगर नहीं भी पहुंचा सका ना, फिर भी आपके अपने साथ तो है ना, आपको तो फायदा पहुंचेगा। ठीक है, इसी तरह इस मिसाल में एक और इशारा यह भी है कि जिस तरह रोशनी का फायदा हर इंसान और हैवान को इरादा व बे इरादा हर हाल में कुछ ना कुछ पहुंचता है, फर्ज करो कि ना रोशनी वाला ये चाहता है कि दूसरे को फायदा पहुंचे, ना दूसरा ये कसद करके निकला है कि उसकी रोशनी से मुझे फायदा पहुंचे, मगर जब रोशनी किसी के साथ होगी तो उससे जबरी और कुदरती तौर पर सबको ही फायदा पहुंचेगा। ठीक है, यानी जो भी उस रोशनी के करीब आएगा उसको तो उस रोशनी से फायदा पहुंचेगा ना। ठीक है, चाहे वो बस ऐसे ही करीब आ गया हो, किसी और मकसद से करीब आ गया हो, लेकिन फिर भी उसको फायदा पहुंच जाएगा रोशनी से। हाँ, जो के रोशनी के करीब नहीं आना चाहता और अपनी निगाह को दूसरी तरफ रखता है, उसको फायदा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो बस इतना सा कि भाई रोशनी तो ऐसी चीज है ना जिससे कि जब रोशनी है तो फिर फायदा, कुछ ना कुछ फायदा तो पहुंचता ही है। इसी तरह मोमिन के ईमान से दूसरों को भी कुछ कुछ फायदा पहुंचता है, ख्वा उसको एहसास हो या ना हो। आखिर आयत में इरशाद फरमाया कदालिक ज़ुय्यिना लिल्काफ़िरीना मा कानू यअमलून, यानी इन वाज़ह किए हुए दलाइल के बावजूद मुनकरीन और कुफार जो बात को नहीं मानते हैं उसकी वजह यह है कि हर कस बख्याल ख्वाहिश खबते दारद, शैतान और नफ्सियाती ख्वाहिशात ने उनकी नजरों में उनके बुरे आमाल ही को खूबसूरत और भला बना रखा है। ठीक है, यानी जाहिल इंसान जो होता है, जिसके पास दलील वाला इल्म नहीं होता, तो वो अपनी जहालत में ना अपनी जहालत को ही अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यही इसका मफहूम है कि हर शख्स अपनी राय को सही समझता है बगैर इल्म के। जिसके पास इल्म होता है उसको पता चल जाता है कि नहीं, मेरी राय अब तक ठीक नहीं थी। ठीक है, बेइल्म उसको ठीक समझते। ठीक है, तो अलहमदुल्ला कम से कम हमने इस आयत की मार्फत मसाइल पढ़ के कर लिए। अगर चाहे कि आपसे मुआवजत के थोड़ा सा और मजीद एक्स्ट्रा टाइम ले ली, घंटे से भी ज्यादा, तो अल्लाह ताला बस बात की समझ और उनकी तौफीक हम सबको अता फरमाए। जी तो इल्म अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाई, इसको हमारे हक में हुज्जत बनाए, हम में से किसी एक के भी खिलाफ इसको हुज्जत ना बनाए। अल्लाह ताला इसको हम सब की निजात का सबब बनाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।